समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कान्हा, कृष्ण गोपाल, मनमोहन, मदन, माखन चोर, मुरलीधर, बंसी बजैया, रास रचैया, गोविंदा, केशव, छलिया, योगेश्वर, द्वारिकाधीश, सुदर्शन चक्रधारी जैसे कई नामों से जाने जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
A very happy Janmashtami to all of you. Today is the birthday of the divine and let's celebrate this together, this auspicious occasion and the spirit of Bal Gopal by sending heartwarming wishes to all of you. So we have nothing to fear as long as Kanha is present in our hearts, right?
Bilkul, aur Tanvi karm ka sabse acha sandesh agar kisi ne diya hai, to Krishna ne diya hai.
Bilkul. It's the birthday and we celebrate it like nothing else. We celebrate this festival after 8 days after Raksha Bandhan and Lord Krishna's life marks the passing of Dwapar age and the beginning of Kaliyug, jo ki hamara abhi ka yug hai.
Bilkul, aur sabse achhi baat ye hai Krishna mein ki jahan wo bansi baja sakte hain, wahin jab zarurat padti hai to chakra bhi dharan kar lete hain.
Absolutely.
सुप्रभात, आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। आज सवेरे का नया अंक लेकर आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार अलका। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एंड दिस इज एन अमेजिंग डे एंड अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज 26th ऑफ अगस्त, अ वेरी स्पेशल डे एंड लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस।
भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दूसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव इस बैठक में भाग लेंगे। ये चारों मंत्री सिंगापुर के अपने समकक्षों और वहां के नेतृत्व से मिलेंगे। इस गोलमेज सम्मेलन का आरंभ भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्घाटन सितंबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। इसकी दूसरी बैठक से दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा और साथ ही वे इसे और आगे बढ़ाने और विस्तार देने के लिए नए रास्तों की पहचान करेंगे। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बड़ा स्रोत रहा है। द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक साझेदार है।
Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal discussed bilateral trade and investment issues with the global business leaders in Singapore yesterday. In a statement, Ministry of Commerce and Industry said, during the meeting, key discussions were held to explore and enhance investment opportunities between India and Singapore, focusing on mutual growth and collaboration across diverse sectors. The ministry said that the focus was on exploring investment opportunities in India, leveraging the country's economic growth and fostering collaboration across various sectors.
जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
Maharashtra Cabinet, chaired by Chief Minister Eknath Shinde, has approved the implementation of a revised National Pension Scheme, NPS, for state government employees on the lines of the Centre's Unified Pension Scheme, UPS. The revised National Pension Scheme of the state government will be implemented from 1st of March 2024. There are 13.45 lakh state government employees and also from local self-government. Of the 13.45 lakh employees, 8.27 lakh employees are presently covered under the National Pension Scheme. The Cabinet gave its consent based on the report submitted by a high-level committee headed by retired IAS officer Suresh Kumar, which had recommended that the state government should bear the risk of investment in the NPS.
ब्राजील के विदेश मंत्री मौरी वियरा 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री वियरा की यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्री वियरा कल भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है, इसलिए दोनों मंत्री भारत की G20 अध्यक्षता से प्राप्त प्रमुख नतीजों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। भारत और ब्राजील के बीच साझा मूल्यों पर आधारित बहुआयामी संबंध हैं। विदेश मंत्री वियरा की यात्रा 2006 में स्थापित सामरिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने तथा विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का अवसर उपलब्ध कराएगी।
India Meteorological Department, IMD, has warned of heavy rain in Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Goa during next 3 days. A depression over northwest Madhya Pradesh and adjoining east Rajasthan has intensified into a deep depression. The system is expected to move west-southwest, affecting south Rajasthan and Gujarat and reaching Saurashtra and Kutch. Another low-pressure area is located over Bangladesh and adjoining Gangetic, West Bengal. It is likely to intensify further and move towards Gangetic, West Bengal, North Odisha and Jharkhand over the next 2 days. IMD said heavy to extremely heavy rainfall is expected in West Madhya Pradesh today.
समूचे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है धूमधाम से, यह हम बता ही चुके हैं, और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष उत्साह है। इस अवसर पर वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि खुशी का ये त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने सभी से भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों को अपनाने और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने का संकल्प लेने का भी अनुरोध किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि त्यौहार धर्म के शाश्वत मूल्यों, बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य और करुणा पर आधारित जीवन के महत्व को दर्शाता है।
In SAF Under 20 Championship, India's men's national team will take on Bangladesh in the semi-finals at the ANFA complex in Kathmandu, Nepal today. The match will start at 2:45 p.m. Indian Standard Time. India have had a steady start to the campaign, registering 1-0 victories over Bhutan and the Maldives to book their spot in the semi-finals as Group B toppers. India head coach Ranjan Chaudhary said that Bangladesh are traditionally one of the strongest teams in this competition and we will have to bring our best to the table today. The Blue Colts, having scored just 2 goals, are among the lowest scorers of the tournament among the teams in the last 4. However, Chaudhary remained bullish about their performance.
यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। सभी की निगाहें सुमित नांगल और रोहन बोपन्ना पर होंगी क्योंकि वे भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। सुमित नांगल 2019 के बाद एक साल में सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के एकल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बनने के लिए तैयार हैं। टेनिस रैंकिंग में 72वें स्थान पर मौजूद नांगल इस साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन चैंपियनशिप में पहले दौर से बाहर होने से पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे दौर में पहुंचे थे। दो बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन को पुरुष युगल में स्पेन के मार्सेल ग्रोनलर्स और अर्जेंटीना के हारोसियो जेबालोस के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ है तन्वी।
लेट्स बिगिन विद चेन्नई। द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन तमिलनाडु विल बी हैविंग अ सेफ ऑडिट। एडमिनिस्ट्रेटर्स विल कंडक्ट द ऑडिट अलोंग विद पुलिस ऑन कॉलेज कैंपसेस, हॉस्पिटल्स एंड हॉस्टल्स। द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉ जे संगुमणि सेड दैट अ मीटिंग विद द हेड्स ऑफ 36 मेडिकल कॉलेजेस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सिविल वर्क दैट मस्ट बी कैरिड आउट to improve safety on campus. The meeting was held following instructions from the National Medical Commission. The notice has asked all the medical institutions must develop a policy for a safe work environment within college and hospital campuses for all staff members, including faculty, medical students and resident doctors. If we go to Hyderabad, the Telangana Prohibition and Excise Department sleuths conducted checks at 25 bars and pubs in the city late on Saturday night. No person who underwent the drug detection test had shown drug consumption signs. Teams of the P&E department had conducted the checking at different bars and pubs located at Sarur Nagar and in posh areas like Jubilee Hills, Kondapur, Banjara Hills, Madhapur and other areas of the city till late in the night. The local P&E officials, the task force teams and the enforcement teams of the excise department participated in the operation. The department will be continuing such exercise in future also in the city. Let's go to Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah inaugurated Shri Krishna Devaraya Palika Bazaar in Vijayanagar Township of Bengaluru today. I beg your pardon, it was yesterday. It is said to be South India's first fully air-conditioned underground market. Consisting of 79 outlets, the underground market was built by the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palika for the street vendors. Situated very close to Vijayanagar Metro Rail Station and bus stand, the market was built at a cost of 13 crore rupees. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that the street vendors will no longer face the vagaries of nature like heat of the sun and rain, and will be able to sell their wares in the underground air-conditioned market with modern amenities. So these were the updates from three metro cities. Now let's ask Alka about Delhi, Mumbai and Kolkata.
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 निगम पार्षद कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्षदों ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी और योगेंद्र चंदोलिया की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 नेता भी भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता और उनकी कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा ने स्थायी समिति और वार्ड कमेटी के चुनाव में अपना वर्चस्व जमाने के लिए आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE के स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। CDOE नए सत्र की शुरुआत इस वर्ष के सितंबर या अक्टूबर में UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार कर सकता है। नए सत्र में कुछ नए अध्ययन केंद्र भी शामिल किए जा सकते हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ने कल मदनगीर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100 गरीब महिलाओं को LPG गैस के मुफ्त कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत केवल गैस कनेक्शन ही नहीं दिया जा रहा बल्कि परिवारों को लकड़ी तथा अन्य ईंधन के प्रदूषण से पैदा होने वाली बीमारियों से भी मुक्ति दी जा रही है। वहीं बात करें मुंबई की तो भारतीय नौसेना का अग्रणी युद्धपोत आईएनएस मुंबई आज 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचेगा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये आईएनएस मुंबई की श्रीलंकाई बंदरगाह की पहली यात्रा है और इस साल श्रीलंका में बंदरगाह पर आने वाला ये 8वां भारतीय नौसैनिक जहाज है। वहीं नवी मुंबई नगर निगम ने पेड़ों पर पोस्टर और कटआउट लगाने वाले अपराधियों के खिलाफ नोटिस भेजकर और पुलिस में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सिविक गार्डन विभाग ने निवासियों से अपील की कि पेड़ों पर विज्ञापन और रोशनी पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा नागरिकों संगठनों मंडलों और राजनीतिक दलों से पेड़ों पर कील लगाकर विज्ञापन न लगाने को कहा गया है क्योंकि इससे शहर में हरियाली को नुकसान पहुंचता है। और तन्वी ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई पेड़ पे कील कैसे ठोक सकता है।
एब्सोल्युटली, बट स्टिल पीपल डू इट।
बिल्कुल। और अब बात करें कोलकाता की तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई मंदिरों और सड़कों को सजाया गया है। हावड़ा में वेलूर मठ और रामकृष्ण मठ एवं मिशन की अन्य शाखाएं इस अवसर पर उत्सव मनाएंगी और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन भी जन्माष्टमी मनाएगा। गौड़िया मठ और मिशन भी पूरे पश्चिम बंगाल में जन्माष्टमी मनाएंगे और राज्य के लोग भी अपने घरों में पूजा और अन्य अनुष्ठानों के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं।
सो एवरी स्टेट एवरी सिटी इज सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी नो मैटर व्हाट, राइट?
बिल्कुल। आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और तन्वी के साथ। अब मौसम पे नजर डालते हैं तो सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बात करें मुंबई की तो आमतौर पर वहां बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बाकी नगर के तापमान आप बताएं।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई बट विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट हैदराबाद, इट्स एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई बट विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडरशावर। The temperature will hover somewhere between a minimum of 22 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
बिल्कुल। और अब तन्वी समय है कि इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 26 अगस्त है और आज का दिन महिला समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वुमेन्स इक्वालिटी डे। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की। भारत में आजादी के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था लेकिन पंचायतों और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन में मिला।
Absolutely, and if we talk about women's equality, I don't think there should be a day dedicated to this particular day because we can celebrate this occasion every day, every
बिल्कुल.
minute of our lives, right?
बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और शक्ति का वैसे भी कोई दिन नहीं होता है।
True. If we talk about more history, what all happened on this particular day, in 1303, Alauddin Khilji of the Khilji dynasty attacked and captured Chittorgarh. In 1852, Bombay Association was established, and in 1897, Thomas Alva Edison received a patent for the kinetographic camera, a new, certain, and useful improvement for the forerunner of the motion picture film projector.
बिल्कुल। और 1914 की बात करें तो बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर 50 माउजर और 46,000 राउंड गोलियां लूटी थीं। और 1920 की बात करें तो अमेरिका में महिलाओं को आज मताधिकार का अधिकार मिला था। और 1977 की बात करें तो जर्मनी के म्यूनिक शहर में 20वें ओलंपिक खेलों की आज शुरुआत हुई थी। वहीं 1982 में नासा ने टेलीसेट एफ का प्रक्षेपण किया था। 1999 में माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया था और 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में 10 दिवसीय पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ था।
In 1927, second radio center was started in Kolkata, and in 1957, the Soviet Union announced it had successfully tested an intercontinental ballistic missile. Now let's come to the portion where we discuss who all took birth on this particular day and who all left for their heavenly abode. And on this list comes the first name, and that is Mother Teresa. Today is the birth anniversary of Mother Teresa. Who doesn't know about this woman, an Albanian Indian Catholic nun and the founder of Missionaries of Charity? At the age of just 18, she moved to Ireland and later to India, where she lived most of her life. On 4th of September 2016, she was canonized by the Catholic Church as Saint Teresa of Calcutta. She has received several honors, including the 1962 Raymond Magsaysay Peace Award and the 1979 Nobel Peace Prize. She was admired by many for her charitable work, and her authorized biography, written by Naveen Chawla, was published in 1992. So let's hear a part of her Nobel Peace Prize speech.
One evening, a gentleman came to our house and said, "There is a Hindu family with 8 children, have not eaten for a long time. Do something for them." And I took rice and I went immediately. And there was this mother, those little ones' faces, shining eyes from sheer hunger. She took the rice from my hand. She divided it into two and she went out. When she came back, I asked her, "Where did you go? What did you do?" "Let us all together thank God for this beautiful occasion where we can all together proclaim the joy of spreading peace, the joy of loving one another, and the joy acknowledging that the poorest of the poor are our brothers and sisters."
हम याद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री को, जिनका जन्म 26 अगस्त आज ही के दिन 1891 उत्तर प्रदेश में हुआ, और विशेष रूप से इन्हें ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। चतुरसेन शास्त्री की ये विशेषता है कि इन्होंने उपन्यासों के अलावा कहानियां भी लिखी और जिनकी संख्या लगभग 450 है। गद्य काव्य, धर्म, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र के साथ साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर भी इन्होंने अधिकार पूर्वक लिखा है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने 32 उपन्यास, 450 कहानियां और अनेक नाटकों का सृजन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने कई अविस्मरणीय चरित्र हिंदी साहित्य को प्रदान किए। सोमनाथ, वयम रक्षामह, वैशाली की नगरवधु, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता, केसरी, स्नेह की रिहाई, धर्मपुत्र, पत्थर युग के दो बुत, बगुला के पंख उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, और ये चार खंड में लिखे गए। सोना और खून के दूसरे भाग में 1857 की क्रांति के दौरान मेरठ अंचल में लोगों के बलिदान का मार्मिक चित्रण किया गया है। गोली उपन्यास में राजस्थान के राजा महाराजाओं और दासियों के संबंधों को उकेरते हुए समकालीन समाज को रेखांकित किया गया। अपनी समर्थ भाषा शैली के चलते शास्त्री जी ने अद्भुत लोकप्रियता हासिल की और जन साहित्यकार बने।
Today we are also remembering Bal Krishna Vitthal Das Doshi, an Indian architect. His noteworthy designs include Flame University, IIM Bangalore, IIM Udaipur, NIFT Delhi, Ahmedabad Nigufa, CEPT University and the Aranya Low Cost Housing Development in Indore, for which he was awarded the Aga Khan Award for Architecture. He is an important figure in Indian architecture and noted for his contributions to the evolution of architectural discourse in India. He was a pioneer of modernist and brutalist architecture in India.
बिल्कुल, और आज हम याद कर रहे हैं खारिलकर कृष्णजी प्रभाकर, इनकी आज पुण्यतिथि है, जो सुप्रसिद्ध नाट्याचार्य खारिलकर कृष्ण जी प्रभाकर हैं, और इनका जन्म 25 नवंबर 1872 को सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही इनकी रुचि नाटकों में साफ दिखने लगी थी। हाई स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ते हुए इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी नाटकों का गहन अध्ययन किया। 1893 में इनका सवाई माधवराव की मृत्यु नामक गद्य एवं दुखांत नाटक अभिनीत किया इन्होंने, जिसने दर्शकों को विशेष आकर्षित किया। इसके उपरांत कीचकबद्ध और भाव बंदकी जैसे गद्य नाटकों ने इनकी लोकप्रियता को चार चांद लगाया, और इनका कीचकबद्ध नाटक सामयिक राजनीतिक परिस्थितियों पर लिखा व्यंग्य करने में इतना सफल रहा कि अंग्रेज सरकार को उसे जब्त करना पड़ा। 1912 में इन्होंने संगीत नाटक लिखना प्रारंभ किया और 1936 तक इस प्रकार के 7 नाटक लिखे। नाट्य वस्तु में के विन्यास, चरित्र चित्रण, प्रभावकारी कथोपकथन, रसों के प्रवाह सभी दृष्टि से खांडिलकर के नाटक में परिपूर्ण थे।
Today we are also remembering A.K. Hangal. It's his death anniversary, an Indian freedom fighter and actor. Well, we cannot forget his role in Sholay, and there were multiple more movies that he did where he is famous, and he's acted around in 225 Hindi films in a career spanning from 1966 to 2005, and the Government of India awarded him the Padma Bhushan for his contribution to Hindi cinema in 2006. So let's hear a famous dialogue of his from the film Sholay.
Ja rahe ho Mia? Ja, Allah ke support. Pahunchte hi aaj se khat likh dena khairiyat ka.
Ji abba.
Mia, tum khane peene ke mamle mein bade laparwah ho. Zara sehat ka khayal rakhna. Oye khuda bakhshe, hamare walid kaha karte the ke jaan ka sadqa maal aur izzat ka sadqa jaan. Chal, thodi dur saath chalta hu. Sair bhi ho jayegi.
Nahi abba, aap aaram kijiye. यहीं से चला जाऊंगा।
अच्छा, ठीक है।
और अब बात करें राधेश्याम कथावाचक की, जिन्होंने रामायण की कथा को खड़ी बोली पद्य के द्वारा कई खंडों में लिपिबद्ध किया है। और ये रचना हिंदी क्षेत्रों, विशेषतः उत्तर प्रदेश के गांवों में पिछले अनेक दशकों में अत्यंत लोकप्रिय रही। राधेश्याम रामायण में वर्णित नैतिक मूल्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। और आपने एक अन्य क्षेत्र में भी बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया, और वो था न्यू एल्फ्रेड कंपनी द्वारा पारसी नाटक कंपनियों, प्रायः अंग्रेजी और पारसी प्रेमाख्यानों पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन करके ये धन कमाते थे, और इसका लोक रुचि पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। राधेश्याम ने ऐसे कंपनियों द्वारा अभिनय करने के लिए पौराणिक आख्यानों के आधार पर सुरुचिपूर्ण नाटकों की रचना करने को कहा।
Today is the birthday of Neeru Bajwa, a Canadian actress, director and producer who has worked in Hindi cinema, mainly in Punjabi and even Hindi films. She started her career in 1998 with Devanand's Bollywood film Main Sola Baras Ki, and then moved on to working in Hindi soap operas and Punjabi language films. Many of us remember her from the series of movies of Jatt and Juliet, so let's enjoy a beautiful track of the same film.
ਵੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਬਸ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਬੁਲਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਵੱਖਿਆਂ ਨੂੰ।
It's also the birthday of Madhur Bhandarkar, an Indian film director, scriptwriter and producer, and he was honored in 2016 with the Padma Shri, the fourth highest civilian honor by the Government of India. He is known for the movies like Chandni Bar, Page 3, Traffic Signal, Fashion and many more. He has won multiple national awards, and he has also co-produced a Bengali film, Avi Jatrik, in 2021, which won the National Film Award for Best Feature Film in Bengali. So let's hear a soulful track from one of his most successful movies, that's Fashion.
शायद ये बहार है या इंतजार है, शायद ये प्यार है या शायद।
हम याद कर रहे हैं विधिवेत्ता, बांग्ला कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन को, जिनका जन्म 28 अक्टूबर 1871 को पूर्वी बंगाल के नारायणगंज में हुआ था। कोलकाता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद कानून की शिक्षा पाने के लिए ये इंग्लैंड गए, और सन 1895 में शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ दिन कोलकाता में वकालत की और उसके बाद लखनऊ को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। अतुल प्रसाद की गणना चोटी के वकीलों में होती थी। वो सार्वजनिक कार्यों में भी पूरी रूचि लेते थे और लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे और जीवन पर्यंत उस संस्था से जुड़े रहे। वो बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार भी थे। उनके रचित राष्ट्रप्रेम और भक्तिपरक गीतों को बांग्ला संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान का स्थान प्राप्त है। 26 अगस्त 1934 को उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके नाम पर एपी सेन रोड लखनऊ में आज भी उनकी याद दिलाता है।
And with this, we have come to the end of our program. So, once again, we just want to wish everyone, each and every one, a very happy Krishna Janmashtami or Gokul Janmashtami. There are a lot of terms that we use for this particular day.
बिल्कुल तन्वी, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो इस तरह के विशेष दिन होते हैं उसमें पूरे माहौल में, पूरी फिजाओं में सब कुछ एकदम बदला बदला सा नजर आता है। लोग सुबह से ही, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कृष्ण बनते हैं, राधा, और ये सब पूरे घर में, पूरे घर का माहौल, बाहर का माहौल, मंदिरों का, सब जगह का माहौल एकदम भक्तिमय और उत्साहमय हो जाता है।
राइट,
ये बहुत अच्छी हमारी विशेषता रहती है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि श्रोताओं से हम अनुमति लें, तो अलका सिंह और तन्वी खुराना को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।